नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी।
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम।
मंत्रिमंडल ने उड़ीसा में राजधानी क्षेत्र नियंत्रित रिंग रोड के निर्माण की भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और राजस्थान से संबंधित मंत्रिमंडल के फैसलों का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर में रिंग रोड परियोजना से भीड़भाड़ कम होगी और जीवन सुगम होगा। श्री मोदी ने कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के सभी नेता इसमें शामिल होंगे। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राधाकृष्णन का एनडीए सांसदों से परिचय कराया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और सभी सांसदों से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए श्री राधाकृष्णन का सर्वसम्मति से समर्थन करने की अपील की है।
हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें, तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है।
इस बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के गया में औंटा सिमरिया परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना में गंगा नदी पर लगभग 2 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण शामिल है। ये पुल पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने भारत चीन सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर बल दिया है और सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का संदेश और निमंत्रण सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल कजान में राष्ट्रपति जिनफिंग के साथ अपनी मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर और सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली भी शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ जयशंकर मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री रूस की 3 दिन की यात्रा पर हैं। मुंबई में कल शाम 2 मोनोरेल ट्रेन एलिवेटेड ट्रैक पर फंस गई, जिसके बाद लगभग 4 घंटे चले बचाव अभियान में 500 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच फंसी एक ट्रेन से 400 से अधिक यात्रियों को निकाला गया, जबकि 100 से अधिक लोगों को ले जा रही दूसरी ट्रेन को वडाला स्टेशन वापस खींचकर लाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मूसलाधार बारिश की वजह से उपनगरीय रेल सेवाएं स्थगित होने के कारण मोनोरेल ट्रेन क्षमता से अधिक भरी हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान हो गया है। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल होंगे। ये प्रतियोगिता 9 सितंबर से शुरू होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।